हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरे स्कंद अध्याय 4 श्लोक संख्या 23 से 30 तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति।
आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेनया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं प्रेम पुमर्थो महा श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो न परं वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांभर दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा उरणेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानि करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटीशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्वा मृत्युमेतदेव गोविंद दामो धर्माधवेति बर्हापीडं नटवरवपुकर्णियो कर्णिकार बिभ्रात्वा सह कनकपिशं वैजन्तीं च माल्यम् रन्ध्रावेणुरधरसुदया पूर्णयोगोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ते अहो वकीयं स्तनकालकूटम् जिङ्घासयापा ययदप्यसाध्वी लेभे गतिं दात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलकिशो जय गोपी चित छोर प्रभु, जय जय माखन चोर।
श्री कृष्ण चंद्र भगवान की ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 4, जिसका शीर्षक है विदुर का मैत्रेय के पास जाना। जैसा कि हमने कल पढ़ा कि विदुर जी को जब उद्धव जी ने भगवान के इस संसार से जाने की घटना के विषय में सुनाया, उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं भगवान के इस वियोग को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं बद्री का आश्रम जाना चाहता हूँ। बद्री का आश्रम वह स्थान है जहाँ नर नारायण ऋषियों के रूप में अपने अवतार में भगवान अनादिकाल से समस्त मिलनसार जीवों के कल्याण के हेतु तपस्या कर रहे हैं। और जब विदुर जी ने ये सब वार्तालाप श्रवण किया, उसके बाद उनकी क्या स्थिति हुई उसके विषय में श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं। श्री शुक उवाच, श्लोक नंबर 23। इत्युद्धवा दुपाकर्ण्य सुहृदं दुसहं वदम् ज्ञानेनाशमयत्क्षत्ता शोकम् उत्पतितं बुधः। इत्युद्धवा दुपाकर्ण्य सुहृदं दुसहं वदम् ज्ञानेनाशमयत्क्षत्ता शोकम् उत्पतितं बुधः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा इति अर्थात इस प्रकार, उद्धवात उद्धव से, उपकर्ण्य सुनकर, सुहृदाम अर्थात मित्रों तथा संबंधियों, दुस्सहम असह्य, वदम यानी संहार के, उद्धव ने जब भगवान और उनके संबंधियों के इस भौतिक जगत से चले जाने के विषय में बताया, तो उद्धव ने जब ये बताया तो विदुर जी के लिए ये सहना बहुत कठिन था। सुहृदं दुस्सहं वदम्, ये बहुत दुस्सह था, असह्य था। परंतु ज्ञानेनाशमयत्क्षत्ता, ज्ञानेन अर्थात दिव्य ज्ञान से, आशमयत अर्थात स्वयं को सांत्वनादि क्षत्ता विदुर जी ने, शोकम उत्पतितम बुधः, शोकम अर्थात वियोग, उत्पतितम उत्पन्न हुआ, बुधः अर्थात विद्वान। अनुवाद, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा उद्धव से अपने मित्रों तथा संबंधियों के संहार के विषय में सुनकर विद्वान विदुर ने स्वयं के दिव्य ज्ञान के बल पर अपने असह्य शोक को प्रशमित किया। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं विदुर को बताया गया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के परिणाम स्वरूप उनके मित्र तथा संबंधियों के संहार के साथ साथ यदुवंशों का विनाश तथा भगवान का प्रयाण हो चुका है। इन सब से कुछ समय तक वे शोकाकुल हो उठे, किंतु दिव्य ज्ञान में अत्यधिक बढ़े चढ़े होने से वे अपने को उस ज्ञान द्वारा शांत करने में पर्याप्त समर्थ थे। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, शारीरिक संबंधियों के साथ दीर्घकालीन संगति के फलस्वरूप मित्रों तथा संबंधियों के संहार के कारण शोक का होना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है, किंतु मनुष्य को उच्चतर दिव्य ज्ञान के द्वारा ऐसे शोक को दमित करने की कला सीखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अशुचानन्व शोचस्व प्रज्ञावादाश्च भासते गतासु न गतासुश्च नानु शोचन्ति पंडिता। इस भौतिक जगत में जन्म और मृत्यु तो अनिवार्य है, कोई भी ऐसा जीव आज तक जन्म नहीं लिया जिसकी मृत्यु ना हुई हो।
प्रत्येक जीव जन्म लेता है उसी क्षण उसकी मृत्यु निर्दिष्ट हो जाती है, और चाहे कुछ भी हो जाए हम उस मृत्यु को नहीं टाल सकते। इसलिए भगवान कहते हैं जो बुद्धिमान होते हैं वो ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं और ना ही मृतक के लिए, परंतु हम क्योंकि साधारण जीव हैं, बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान का मतलब है जो अपनी वास्तविकता को जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और जिससे मेरा संबंध है वो भी कोई शरीर नहीं हो सकता है। तो हम क्योंकि मूर्ख हैं और भौतिक जो व्यक्ति हैं उनके प्रति हमारा आकर्षण बहुत तीव्र है, उस आसक्ति के कारण शोक होता है। वास्तव में जीना और मरना तो अनिवार्य है। इसलिए जो ज्ञान, जिनके पास ज्ञान होता है, ज्ञाने नाशम, यहाँ पर साफ साफ बताया गया, ज्ञान के द्वारा वो अपने इस असह्य कष्ट को, दुख को बर्दाश्त करने के लिए समर्थ हो गए। तो जीवन में कभी भी ऐसी कोई घटना हो, हमें इस बात को याद रखना है कि जिसकी मृत्यु हुई है वो तो ये शरीर ही है जिसमें से आत्मा निकल गई। मृत्यु तो बस इस घटना का नाम है जब वो आत्मा इस शरीर से निकल गई है, तो वो शोक करने का नहीं अपितु प्रार्थना करने का समय होता है, ताकि उस आत्मा की गति हो, जो आत्मा हमारी संबंधी थी, हमारे लिए इतना सब त्याग किया, इतना स्नेह दिया, तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। बाकी रोने से या शोक करने से तो कोई लाभ भी नहीं होगा। ऐसा भी नहीं है कि हम रोएंगे, दुखी होंगे, शोक करेंगे तो वो पुनः लौट के आएगा, और अगर वो पुनः लौट के उस शरीर में आ भी जाए, कोई मृतक शरीर यदि वापस जीवित हो भी जाए, तो भी क्या उसके साथ संबंध जोड़ा जाएगा। इसलिए अत्यंत ही सुंदर शिक्षा है, ज्ञाने नाशमयत क्षत्ता शोकम उत्पतितम बुधः। हमें बुद्धिमान की तरह कार्य करना चाहिए और दुखी न होकर उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आगे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, किंतु मनुष्य को उच्चतर दिव्य ज्ञान के द्वारा ऐसे शोक को दमित करने की कला सीखनी चाहिए। उद्धव तथा विदुर के बीच कृष्ण विषयक वार्ता की शुरुआत संध्या समय हुई, और अब उद्धव की संगति से विदुर का ज्ञान और भी बढ़ गया। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अब विदुर जी को ये सब वार्ता सुनाने के बाद जब उद्धव जी ने देखा कि उन्होंने अपने असह्य शोक को भी शमन कर लिया है, तो उद्धव जी जा रहे थे, परंतु विदुर जी उद्धव जी को जाते देखकर उनसे कुछ पूछते हैं। उसके विषय में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सतम महाभागवतम व्रजंतम कौरव वर्षभ विश्रभ्याद्य धत्तेदम मुख्यम कृष्णा परिग्रहे सतम महाभागवतम व्रजंतम कौरवर्षभ विश्रम्भाद्य दत्तेदम मुख्यम कृष्णा परिग्रहे सतम। स अर्थात विदुर ने, तम मतलब उद्धव से, महाभागवतम अर्थात भगवान का महान भक्त उद्धव, व्रजंतम जब वो जा रहे थे जाते हुए, कौरव ऋषभम कौरवों के सर्वश्रेष्ठ, विश्रम्भात विश्वास वश, अभ्यदत अर्थात निवेदन किया, इदम यह, मुख्यम कृष्ण परिग्रह, मुख्यम अर्थात प्रदान, कृष्ण अर्थात भगवान कृष्ण की परिग्रह अर्थात भगवत भक्ति में। अनुवाद। भगवान के प्रमुख तथा अत्यंत ही विश्वस्त भक्त उद्धव जब जाने लगे तो विदुर ने स्नेह तथा विश्वास के साथ उनसे प्रश्न किया। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं विदुर उद्धव से काफी बड़े थे। पारिवारिक संबंध में उद्धव कृष्ण के समकालीन भाई थे, जबकि विदुर कृष्ण के पिता वसुदेव की उम्र के थे। किंतु उद्धव उम्र में कम होते हुए भी भगवत भक्ति में अत्यधिक बड़े चरे थे, इसीलिए उन्हें यहाँ पर भगवान के भक्तों में प्रमुख कहा गया। यहाँ पर महाभागवतम उद्धव जी के लिए बोला गया है। हालांकि उद्धव जी जो है वो आयु में छोटे थे, विदुर काका तो बड़े थे। विदुर काका तो वसुदेव की आयु के थे और उद्धव तो कृष्ण के समकालीन थे, लेकिन फिर भी क्योंकि उद्धव भगवान से अत्यधिक प्रेम करते थे और भगवत भी भक्ति में अत्यधिक बड़े चरे थे, इसीलिए यहाँ पर उन्हें भगवान के भक्तों में प्रमुख कहा गया है। विदुर को इसका विश्वास था, अतः उन्होंने उद्धव को उसी उच्चतर श्रेणी का मानकर संबोधित किया। दो भक्तों के बीच शिष्ट वार्ताओं की यही रीति है। यहाँ शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्त जब अपनी भक्ति में बढ़ा चढ़ा हो तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मेरी तो आयु बड़ी हुई है, ये तो छोटा है, तो उसके साथ किसी भी तरह से वार्तालाप की जाए। नहीं, जो भक्ति में बड़ा हुआ है उसको सम्मान देना चाहिए, भले उसकी आयु कम भी हो तो भी उससे पूर्ण सम्मान के साथ संबोधित करना चाहिए। देखा जाए तो विदुर जी भी कोई कम तो नहीं थे, वो भी भगवान के अनन्य भक्त थे। भगवान स्वयं उनके हाथ से केले के छिलके खाते हैं, क्या वो कोई सामान्य भक्त होंगे? लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्तों के बीच में ये जो शिष्ट वार्ताव है वो उसी तरह से होना चाहिए कि हर भक्त जो है दूसरे को सम्मान के साथ पुकारे, प्रेम के साथ, आदर के साथ उसके साथ वार्तालाप करे। और एक भक्त को हमेशा ये इच्छा रहनी चाहिए कि उसे भक्त की संगति प्राप्त हो। यही दर्शाते हुए जब उद्धव जी वहाँ से जा रहे हैं तो विदुर जी उनसे कहते हैं कि आप जाइए मत, आप मुझे वह सब बातें बताइए, वह सब ज्ञान बताइए, वह भागवतम के विषय में बताइए जो भगवान श्री कृष्ण ने आपको बताया है, उसके विषय में आप मुझे बताइए। आप जा क्यों रहे हो? क्योंकि भगवान के भक्त तो सदैव दूसरों को भगवान के विषय में सुनाते रहते हैं, तो आप भी मुझे सुनाइए ना। विदुर उवाच ज्ञानम परम स्वात्महरहम प्रकाशम यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवानोर हति यद्धि विष्णु भृत्या स्वभृत्यार्थ कृतश्चरन्ति ज्ञानं परं स्वात्मरहं प्रकाशं यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवानोर हति यद्धि विष्णु भृत्या स्वभृत्यार्थ कृतश्चरन्ति। शब्दार्थ विदुर उवाच, अर्थात विदुर ने कहा ज्ञानम परमम स्वात्मरहम प्रकाशम। ज्ञानम अर्थात ज्ञान, परम मतलब दिव्य, स्व आत्म विषयक, रह अर्थात रहस्य, प्रकाशम अर्थात प्रबुद्धता। यदा योगेश्वर ईश्वरस्ते यद आह जो, आह मतलब कहा, योगेश्वर समस्त योगियों के स्वामी ईश्वर यानी भगवान ने ते यानी आपको, उद्धव जी को विदुर जी कहते हैं भगवान जो कि समस्त योगियों के ईश्वर हैं, उन्होंने जो आपको ज्ञानम परमम स्वात्मरहम प्रकाशम, जो अत्यंत ही परम ज्ञान जो आत्मा विषयक रहस्य आपको बताए हैं वो वक्तुम भवानोर हति यद्धि विष्णु। वक्तुम अर्थात कहने के लिए, भवान यानी आप, न मना मुझसे अर्हति योग्य हैं, आप कृपा करके वो मुझे बताइए क्योंकि आप इसके योग्य हैं। और यद विष्णु, यद ही विष्णु मतलब क्योंकि ही मतलब कारण से, विष्णु मतलब भगवान, विष्णु के वृत्तिया मतलब सेवक, जो भगवान के सेवक होते हैं उनकी तो इच्छा ही यही होती है कि वो भगवान के विषय में दूसरों को बताएं, तो आप भी मुझे वो ज्ञान बताइए। स्ववृत्ति अर्थ कृत, अपने सेवकों के हित के लिए चरंती विचरण करते हैं, वो तो जो भगवान के भक्त हैं वो तो प्रविजी का आचार्य की तरह हर एक नगर और गांव में जाते रहते हैं और भगवान के इन अद्भुत आश्चर्यजनक ज्ञान को सबको देते रहते हैं, तो आप भी मुझे बताइए। अनुवाद, विदुर ने कहा है उद्धव, चूंकि भगवान विष्णु के सेवक अन्यों की सेवा के लिए विचरण करते हैं, अतः यह उचित है कि आप उस आत्मज्ञान का वर्णन करें जिससे स्वयं भगवान ने आपको प्रबुद्ध किया है। श्रीला प्रभुपाद की, श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के सेवक वास्तव में समाज के सेवक होते हैं। मानव समाज को दिव्य ज्ञान में प्रबुद्ध बनाने के लिए के अतिरिक्त उनकी कोई रुचि नहीं होती। अब देखिए, जो भगवान के भक्त होते ना, उनकी एक ही रुचि होती है कि जो मानव समाज को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो। दिव्य ज्ञान क्या है? हम भगवान के अंश हैं, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। तो उनका एक ही, उनकी रुचि होती है कि लोग अपने आप को पहचाने और भगवान की भक्ति में लगे। वे परमेश्वर से जीव के संबंध, उस दिव्य संबंध में कार्यकलाप तथा मानव जीवन के चरम उद्देश्य विषय ज्ञान को प्रदान करने में रुचि लेते हैं। किस किस में? भगवान के साथ जीव का क्या संबंध है, और संबंध ज्ञान के बाद अभिदेह के उस संबंध को निर्माण करने के लिए किस तरह का प्रोसेस करना चाहिए कार्यकलाप, और चरम उद्देश्य अर्थात भगवत प्रेम के विषय में ज्ञान प्रदान करने में रुचि देते हैं। यही असली ज्ञान है जो मानव कल्याण के असली लक्ष्य को प्राप्त करने में समाज की सहायता कर सकता है। खाने, सोने, संभोग करने तथा भयभीत रहने की शारीरिक आवश्यकताओं से संबंधित ज्ञान उन्नति की विविध शाखाओं में रूपांतरित होकर भी नश्वर होता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, जीव चाहे कितना भी प्रगति कर लेता है, कितना भी प्रोग्रेस कर देता है भौतिक जगत में, वो यही चार काम करता रहता है बस। जितना भी जीव जो है वो ज्ञान प्राप्त कर ले या धन प्राप्त कर ले, वो खाने सोने संभोग करने और घर बनाने के आगे बढ़ता नहीं है अगर वो भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, ज्ञान उन्नति की विविध शाखाओं के रूपांतरित होकर भी नश्वर है। कुछ भी मिल जाए खाने के लिए, सोने के लिए, चाहे कितना ही खूबसूरत सुंदर बेडरूम हो, चाहे संभोग करने के लिए विश्व भर की अप्सराएं हो, लेकिन ये सब जीव जो भी इस भौतिक जगत में प्राप्त करता है वो सब नश्वर है। जीव भौतिक शरीर नहीं अपितु परम पुरुष का नित्य अंश है, अतः उसके आत्मज्ञान को पुनर्जागृत करना आवश्यक है। इस ज्ञान के बिना मानव जीवन उलझन में पड़ जाता है। भगवान विष्णु के सेवकों को यह उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य सौंपा गया है, अतः वे पृथ्वी पर तथा ब्रह्मांड के अन्य लोकों में विचरण करते हैं। इस प्रकार उद्धव को सीधे भगवान में जो ज्ञान प्राप्त सीधे भगवान से जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह मानव समाज में वितरण करने के योग्य है। विशेष रूप से विदुर जैसे पुरुषों में जो भगवत भक्ति में अत्यधिक बढ़े चढ़े हैं। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, असली दिव्य ज्ञान भगवान से उद्धव उद्धव से विदुर और ऐसे ही आगे शिष्य परंपरा द्वारा आगे आगे उतरता जाता है। ऐसे परम दिव्य ज्ञान को उस अधूरी चिंतन विधि से प्राप्त कर पाना संभव नहीं जैसा कि लौकिक झगड़ालू तथा कथित विद्वान करते हैं। विदुर उद्धव से उस गुह्य ज्ञान को जानने के लिए उत्सुक थे जो परमाम स्थितिम कहलाता है, जिसमें भगवान अपनी दिव्य लीलाओं द्वारा जाने जाते हैं। यद्यपि विदुर उद्धव से बड़े थे किंतु आध्यात्मिक संबंध में वे उद्धव का सेवक बनने के लिए उत्सुक थे। दिव्य शिष्य परंपरा का यह सूत्र चैतन्य महाप्रभु ने भी सिखाया। श्री चैतन्य महाप्रभु सलाह देते हैं कि मनुष्य को किसी से भी, चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, ग्रस्त हो या सन्यासी, दिव्य ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, बशर्ते कि वह व्यक्ति कृष्ण विज्ञान में यथार्थ रूप से पटु हो। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के निर्णया ये ही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होया। चैतन्य महाप्रभु कहते चाहे वो ब्राह्मण हो या शूद्र हो, वैश्य हो या सन्यासी हो, लेकिन ये ही कृष्ण तत्ववेता, यदि वो कृष्ण के तत्व को जानता है, यदि वह व्यक्ति कृष्ण विज्ञान में यथार्थ रूप से पटु है तो वो गुरु बनने के योग्य है। वस्तुतः जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान जानता है वही प्रमाणिक गुरु है। श्रील प्रभुपाद की जय। परंतु यहाँ पर उद्धव जी के लिए तो एक समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि वो जानते थे कि विदुर जी भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो आयु में भी मुझसे बड़े हैं, तो मैं कैसे उनको शिक्षा दे सकता हूँ। इसलिए उद्धव अब उत्तर देते हुए कहते हैं, उद्धव उवाच ननु ते तत्व संराध्य ऋषि कौशारवोंतिके साक्षात् भगवता दिष्टो मृत्यलोकं जिहासता ननु ते तत्व संराध्य ऋषि कौशारवोंतिके साक्षात् भगवता दिष्टो मृत्यलोकं जिहासता ननु ते तत्व संराध्य। ननु ते, उद्धव ने कहा, लेकिन ते यानी तुम्हारे तत्व संराध्य दिव्य ज्ञान को ग्रहण करने के लिए पूजनीय ऋषि अर्थात विद्वान कौशारव, कौशारव का मतलब होता है कौशारु के पुत्र यानी मैत्रेय ऋषि अंति के निकट साक्षात भगवता दृष्टो, साक्षात मतलब प्रत्यक्ष, भगवता यानी भगवान द्वारा आदिष्टो यानी आदेश दिया गया, मर्त्यलोकम मृत्युलोक को जिहासता छोड़ते हुए। जब भगवान इस मृत्युलोक को छोड़ रहे थे तब उस समय कौशारव अर्थात मैत्रेय मुनि जो कि कौशारु के पुत्र हैं वो वहाँ पर थे और साक्षात भगवान से उन्होंने ज्ञान सुना था, तो वो उनको भगवान ने आज्ञा दी है कि वो आपको इस ज्ञान को सुनाए तो आप उनसे सुनिए। उद्धव, श्री उद्धव ने कहा, अनुवाद, आप महान विद्वान ऋषि मैत्रेय से शिक्षा ले सकते हैं जो पास ही में हैं और जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूजनीय हैं। जब भगवान इस मृत्युलोक को छोड़ने वाले थे तब उन्होंने मैत्रेय को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दी थी। शीला प्रभुपाद की, शीला प्रभुपाद जी कहते हैं, कोई भले ही दिव्य ज्ञान में पारंगत क्यों न हो उसे मर्यादा व्यतिक्रम अर्थात अपने से उच्च पुरुष की दृष्टता पूर्वक अवमानना के अपराध के विषय में सतर्क रहना चाहिए। ये बहुत सावधानी की बात है कि जो उच्च पुरुष हैं तो तो उनकी कभी भी अवमानना नहीं करनी चाहिए, सतर्क रहना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी उच्च वैष्णव का कोई मानहानि नहीं होनी चाहिए। शास्त्रों के आदेशानुसार मनुष्य को मर्यादा व्यतिक्रम नियम का उल्लंघन करने के प्रति अत्यंत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसकी आयु, उसका ऐश्वर्य, उसका यश तथा पुण्य और सारे जगत के शुभाशीषों का विनाश हो जाता है। दिव्य ज्ञान में पारंगत होने के लिए आध्यात्मिक विज्ञान की तकनीकों के प्रति जानकारी होना आवश्यक है। दिव्य ज्ञान की इन सारी बारीकियों से भली भांति परिचित होने के कारण उद्धव ने विदुर को सलाह दी कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे मैत्रेय ऋषि के पास। तो ये बहुत सावधानी की बात है कि हमको मर्यादा का अतिक्रम नहीं करना है, क्योंकि उससे बहुत हानि होने वाली है। आयु, ऐश्वर्य, यश, पुण्य और जगत की शुभाशीष सारे नाश हो जाते हैं, इसलिए सदैव सतर्क रहना चाहिए। इसीलिए उद्धव ने सोचा कि विदुर जी तो कितने महान भक्त हैं और वो भगवान के शुद्ध वैष्णव हैं, विदुर भगवान के शुद्ध वैष्णव भक्त हैं और भगवान उनसे कितना स्नेह करते हैं, तो मैं तो आयु में भी छोटा हूँ उनसे, तो मैं उनको ज्ञान दूंगा, तो ये सही नहीं है। इसलिए उन्होंने उनको ये परामर्श दिया कि आप मैत्रेय ऋषि के पास जाइए। विदुर उद्धव को अपना गुरु मानना चाहते थे, किंतु उद्धव ने यह पद स्वीकार नहीं किया, क्योंकि विदुर उद्धव के पिता जितनी उम्र के थे, अतः उद्धव उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे। विशेष रूप से जब मैत्रेय जी पास में ही उपस्थित थे। नियम यह है कि अपने से बड़े पुरुष की उपस्थिति में उपदेश देने के लिए किसी को उत्सुक नहीं होना चाहिए, चाहे कोई कितना ही दक्ष तथा निष्णांत क्यों न हो। इसलिए उद्धव ने विदुर जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति को एक अन्य वयोवृद्ध व्यक्ति मैत्रेय के पास भेजने का निर्णय किया। हमारे लिए बहुत सुंदर शिक्षा है कि यदि कोई ज़्यादा ज्ञानी और बड़ा पुरुष हमारे सामने उपस्थित हो, तो उनके सामने हमको उपदेश देने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए, बल्कि श्रवण करने के लिए उत्सुक होना चाहिए। और क्योंकि मैत्रेय मुनि पास में ही थे, इसलिए उद्धव ने विदुर जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति को अन्य वयोवृद्ध व्यक्ति मैत्रेय के पास भेजने का निर्णय किया कि वो आयु में भी बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े हैं, विदुर जी उनसे सीखें। वो विदुर जी हालांकि सोच रहे थे कि मैं उद्धव का शिष्य बनूं, लेकिन उद्धव ने कहा कि नहीं, आप मैत्रेय ऋषि से सुनिए। वे भी निष्णांत थे, क्योंकि भगवान ने मृत्युलोक से प्रयाण करते समय उन्हें भी स्वयं उपदेश दिया था। चूंकि उद्धव तथा मैत्रेय दोनों ही को सीधे भगवान ने उपदेश दिया था, अतः वह दोनों को विदुर का या अन्य किसी का गुरु बनने का अधिकार था, किंतु वयोवृद्ध होने के कारण मैत्रेय को विदुर का गुरु बनने का पहला अधिकार था, क्योंकि विदुर आयु में उद्धव से काफी बड़े थे। किसी मनुष्य को लाभ तथा यश के लिए सस्ता आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए, अभी तो केवल भगवान की सेवा के निमित्त ही गुरु बनना चाहिए। भगवान कभी भी मर्यादा व्यतिक्रम की दृष्टता को सहन नहीं करते। मनुष्य को चाहिए कि अपने निजी लाभ तथा यश के लिए वयोवृद्ध गुरुओं को प्राप्य सम्मान में ऊपर चढ़ी ना करें। छत्म गुरु के लिए ढिठाई करना आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति के लिए अत्यंत घातक है। तो यहाँ साफ साफ बताया जा रहा है कि जो आयु में बड़े हैं और जिन्होंने प्योर ज्ञान हासिल किया है, क्योंकि भगवान से ही ज्ञान प्राप्त किया मैत्रेय ऋषि ने भी और उद्धव जी ने, और वो देख रहे हैं कि मैत्रेय ऋषि पास में ही हैं, फिर भी मैं विदुर जी का है ना, मैं विदुर जी को शिक्षा दूं और मैं उसका गुरु बनूं, ऐसा श्री प्रभुपाद जी थे, ऐसे इससे उत्सुकता नहीं होनी चाहिए। गुरु बनने का केवल एक ही कारण होना चाहिए, कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, इसीलिए मुझे ये संदेश पहुंचाना है। बाकी उत्सुक होकर कि सारों का मैं ही गुरु बनूं, मैं मुझे ही सब लोग गुरु पूजा करें, मुझे ही सब लोग नमस्कार करें, इससे क्या होगा? छद्म गुरु के लिए ढिठाई करना आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति करने के लिए अत्यधिक घातक है। इससे हमारी अपनी उन्नति रुक जाएगी। आगे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, श्लोक नंबर 27 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच इति सा विदुरेण विश्वमूर्तेर गुण कथया सुदया प्लावितो रूपा तापः क्षणमिव पुलिनेयमाश्वसुस्ताम् समूषित ओपगवे निशांततोगात् इति सविदुरेण विश्वमूर्ते गुण कथया सुदया प्लावितो रुताप क्षणमिव पुलिनेयमाश्वसुस्ता समूषित ओपगवे निशांततोगात्। श्री शुक उवाच अर्थात सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इति सह विदुरेण, इति मना इस प्रकार, सह मना साथ, विदुरेण मतलब विदुर के, विश्वमूर्ते विराट रूप का गुण कथया अर्थात दिव्य गुणों की बातचीत के दौरान, जब विदुर और उद्धव विश्वमूर्ति भगवान की गुण कथाओं का के विषय में बोल रहे थे, सुदया वो अमृत के तुल्य थे, वो बहुत ही मीठे भगवान की कथाएं, प्लावित उरुताप अत्यधिक कष्ट से अभिभूत, क्षणम क्षण इव सदृश पुलिने तट पर, यमस्वसुताप उस यमुना नदी के समुषित बिताया, ओपगवि अर्थात ओपगव का पुत्र उद्धव निशाम यानी रात्रि तथा तत्पश्चात आगात चला गया। अनुवाद, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह यमुना नदी के तट पर विदुर से भगवान के दिव्य नाम यश गुण इत्यादि की चर्चा करने के बाद उद्धव अत्यधिक शोक से अभिभूत हो गए। उन्होंने सारी रात एक क्षण की तरह बिताई, तत्पश्चात वह वहां से चले गए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते, यहाँ पर कृष्ण के लिए विश्वमूर्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। उद्धव तथा विदुर दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के प्रयाण से अत्यधिक दुखी थे। वे भगवान के दिव्य नाम यश तथा गुणों के बारे में जितनी अधिक चर्चा करते गए, उतना ही उन्हें भगवान का चित्र सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगा। भगवान के दिव्य स्वरूप का ऐसा मानस दर्शन न तो मिथ्या है न काल्पनिक है, अभी तो वास्तव में परम सत्य है। जब भगवान को विश्वमूर्ति के रूप में देखा जाता है तो वे ना तो अपना व्यक्तित्व खोते हैं ना ही अपना दिव्य नित्य स्वरूप, अपितु वे सर्वत्र उसी रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि जब भगवान की कल्पना की जाती है, जब भगवान के विषय में सोचा जाता है और भगवान का मानस दर्शन किया जाता है तो भी वो मिथ्या नहीं है, क्योंकि भगवान परम सत्य है। इस भौतिक जगत में हम अगर वास्तव में भी कुछ देख रहे होते हैं, किसी से मिल रहे होते हैं, किसी के विषय में बात कर रहे होते हैं, तो वह सब ही मिथ्या है, मतलब वास्तविकता भी मिथ्या है। लेकिन भगवान के विषय में यदि चिंतन भी कर रहे होते हैं, यदि भगवान के विषय में सोच रहे होते हैं, भगवान का मानस दर्शन भी कर रहे होते हैं, तो भी यदि भगवान को सपने में भी देख लें तो भी वो सत्य है, और संसार यदि सत्य में भी देखा जाए तो भी वो सपना है। तो विदुर जी और उद्धव जी कंटिन्यूस भगवान के विषय में बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, और जैसे जैसे भगवान के विषय में बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे भगवान के प्रति उनका आकर्षण और भगवान के विरह के कारण उनका हृदय अत्यधिक दुखित होता जा रहा है। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि जब भगवान को विश्वमूर्ति के रूप में देखा जाता है तो वो ना तो अपने व्यक्तिगत को खोते, मतलब प्रत्येक वस्तु वस्तु के अंदर भगवान है, परंतु उनका एक वास्तविक अस्तित्व है, अपना दिव्य नित्य स्वरूप है, और वे सर्वत्र उसी रूप में दृष्टिगोचर है। श्रील प्रभुपाद की जय। अब उसके उपरांत शुकदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछते हैं। वे कहते हैं,
निधनम उपगतेषु ऋषिभोजे ऋषिभोजेषु अधिरथ यूथ पय यूथपेषु मुख्य सतु कथम अविशष्ट उद्धवो यद् धरिरापि तत्यज आकृतिं त्रदीश। निधनम उपगतेषु ऋषिभोजेषु अधिरथ यूथ पयूथ पेशु मुख्य सतु कथम विशिष्ट उद्धवो यद् धरिरापि तत्यज आकृतिं त्रदीश।
राजा उवाच, अर्थात राजा ने कहा, निधनम उपगते, निधनम अर्थात विनाश उपगते हो जाने पर, विष्णु भोजेशु, विष्णुवंशी अर्थात भोजवंशियों का, जब विष्णुवंशी और भोजवंशियों का निधन हो गया यानी विनाश हो गया, तब अधिरथ यानी महान सेना नायक, यूथप मुख्य सेना नायक, यूथपेशु अर्थात उनके बीच मुख्य प्रमुख सह वह तू केवल कथम अर्थात कैसे अविशिष्ट अर्थात बच्चा रहा, कि सारे तो विष्णु वंशी और भोजवंशी तो उन सबका तो विनाश हो गया, उसके अंदर बहुत सारे मुख्य सेनापति थे, सेना नायक थे, लेकिन उसके अंदर तू कथम अविशिष्ट कैसे एक अकेले बच गए, कौन उद्धव, कैसे खाली उद्धव बच गए, जबकि धरिरपि अर्थात हरि यानी भगवान अपि भी तत्यजे समाप्त के, खुद भगवान भी चले गए और खाली उद्धव ही रह गए। आकृतिम यानी संपूर्ण लीलाएं त्र अधीश तीनों लोकों के स्वामी, अपने तीनों लोकों के स्वामी अपनी संपूर्ण लीलाओं को समेट कर वो भी चले गए, सारे ऋषिवंशी भी चले गए, सारे भोजवंशी भी चले गए, तो फिर आखिर अकेले सतु कथम अविशिष्ट उद्धव यत, एक अकेले उद्धव कैसे बच गए। अनुवाद, परीक्षित राजा परीक्षित ने पूछा, तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण की लीलाओं के अंत में तथा उन ऋषि एवं भोज वंशियों के सदस्यों के अंतर ध्यान होने पर जो महान सेना नायकों में सर्वश्रेष्ठ थे, अकेले उद्धव क्यों बचे रहे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री जीव गोस्वामी के अनुसार निधम का अर्थ है, निधनम का अर्थ है भगवान का दिव्य धाम, नी का अर्थ है सर्वोच्च, तथा धनम अर्थात धन है ऐश्वर्य। चूंकि भगवान का धाम दिव्य ऐश्वर्य की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, अतएव उनके धाम को निधनम कहा जा सकता है। व्याकरणिक स्पष्टीकरण के अतिरिक्त निधनम शब्द का असली उद्देश्य यह सूचित करना है कि विष्णु तथा भोज कुलों के सारे सदस्य भगवान के प्रत्यक्ष संगी थे, और भगवान की लीलाओं की समाप्ति पर उन संगियों को दिव्य धाम में उनके अपने अपने पदों पर भेज दिया गया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने आकृतिम शब्द का अर्थ लीलाओं के रूप में किया।
आ का अर्थ है पूर्ण और कृतिम का अर्थ है दिव्य लीलाएं। चूंकि भगवान अपने दिव्य शरीर से अभिन्न है, अतएव उनके शरीर के बदलने या त्यागने का प्रश्न ही नहीं है। भौतिक जगत के रीति रिवाजों और नियमों के अनुसार कर्म करने के लिए भगवान जन्म धारण करते हैं या शरीर त्याग करते हैं, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त वास्तविकता से सुपरिचित होते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम के गंभीर अध्येताओं के लिए आवश्यक है कि वे जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती जैसे महान आचार्यों की टिप्पणियों का अनुसरण करें। अन्य लोग जो कि भगवत भक्त नहीं हैं, उनके लिए ऐसे आचार्यों की टीकाएं एवं व्याख्याएं व्याकरण वाग्चाल प्रतीत हो सकती हैं, किंतु शिष्य परंपरा के अनुसार अनुसरण करने वाले छात्रों के लिए महान आचार्यों की व्याख्याएं अत्यंत उपयुक्त हैं। तो यहाँ पर श्लोक में क्योंकि भगवान के निधन अर्थात भगवान के इस भौतिक जगत में छोड़ने का जिक्र किया गया है, इसे श्रील प्रभुपाद जी जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के विषय में बताया कि निधनम का अर्थ ही ये है कि भगवान अपनी लीलाएं समेट कर अपने दिव्य धाम में चले गए हैं। निधनम अर्थात सर्वोच्च धन, सर्वोच्च ऐश्वर्य वाले धाम में भगवान अपनी लीलाएं समाप्त करके चले गए हैं। तो साधारणतया लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान की मृत्यु हो गई या भगवान ने शरीर त्याग कर दिया, क्योंकि भगवान के शरीर में और भगवान में कोई अंतर थोड़े है। तो भगवान सह शरीर अपनी लीलाएं समेट कर अपने धाम में चले गए। उपगतेषु शब्द भी महत्वपूर्ण है। उपगतेषु का क्या मतलब? चले गए। विष्णु तथा भोज कुलों के सारे सदस्य सीधे भगवान के धाम पहुंच गए। अन्य भक्तगण भगवत धाम सीधे नहीं पहुंचते, किंतु भगवान के शुद्ध संगियों को भौतिक जगत के किसी भी लोक के ऐश्वर्य के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। कभी कभी जिज्ञासा वश भगवत धाम पहुंचने वाले कुछ भक्तों का पृथ्वी के ऊपर के उच्चतर लोकों के ऐश्वर्य के प्रति कुछ आकर्षण होता है, अतएव सिद्धि प्राप्त करते समय वे उन्हें देखने की इच्छा करते हैं। किंतु वैष्णियों तथा भोजों के को सीधे ही वहाँ भेज दिया गया, क्योंकि उन्हें भौतिक लोकों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी सुझाव देते हैं कि अमरकोश के अनुसार आकृति का अर्थ है संकेत, का अर्थ संकेत भी है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रयाण के पश्चात संकेत द्वारा उद्धव को बद्रिका आश्रम जाने का आदेश दिया और शुद्ध भक्त होने से उद्धव ने भगवत धाम वापस जाने की उपेक्षा अधिक श्रद्धापूर्वक उस आदेश का पालन किया। पृथ्वी के धरातल से भगवान के प्रयाण के बाद भी उनके अकेले रहते जाने का यही कारण है। क्यों वो अभी तक रुके थे उद्धव जी, जबकि सारे विष्णु वंशी और भोजवंशी चले गए थे? क्योंकि भगवान ने उन्हें यह आदेश दिया था कि आपको बद्रिका आश्रम जाना है। तो भगवान के आदेश को पूरा करना भक्तों के लिए अपनी इच्छा कोई नहीं होती कि मुझे भी भगवत धाम जाना है, भगवान आप खुद जा रहे हो और मुझे यहाँ पर अकेले नहीं बैठना। नहीं, भक्त केवल भगवान की इच्छा पूरी करने में ही संतुष्टि महसूस कर, भले उसकी इच्छा नहीं भी होती है, भले भौतिक जगत में रहना भक्त के लिए असह्य है, वो भगवान के साथ अपने संबंध के निर्माण के लिए भगवत धाम में रहना चाहता है। भक्त एक क्षण के लिए भी भगवान से दूर नहीं रहना चाहता, लेकिन क्योंकि भगवान की इच्छा होती है कि वो भक्त इस भौतिक जगत में रहे, मेरे नाम गुण लीलाओं का प्रचार करें, इसलिए भक्त सदैव चाहते हैं कि हमें बार बार भगवान जन्म दे दो, हम बार बार आपके आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हैं, हमें भले जन्म जन्मांतर तक जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहें, भले आध्यात्मिक लोक में ना जाएं, लेकिन जहाँ भी रहें, चाहे हमें किसी खट्टर के कीड़े के स्वरूप में भी आप जन्म दे दो, लेकिन हमें वृंदावन में, जहाँ पर आपकी लीलाओं का गुणगान श्रवण कर सकें, शुद्ध भक्तों का सानिध्य प्राप्त कर सकें, ऐसे भक्तों की संगति प्रदान करना, आपके गुण नाम लीलाओं का गुणगान कर सकें और शुद्ध भक्तों के द्वारा श्रवण कर सकें, बस इतना अवसर देना, हमें शुद्ध भक्ति प्रदान करना। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि न धनम न जनम न सौंदर्यम कवितां वा जगदीश कामहे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वये। मुझे न धन चाहिए, न जन्म किसी अच्छे कुल में जन्म चाहिए, ना ही सुंदर स्त्री की आवश्यकता है, ना ही बहुत सारे अनुयायियों की आवश्यकता है। जन्मनि जन्म, मुझे जन्म जन्मांतर के चक्कर से छूटना भी नहीं, परंतु भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वये, आपकी अहितु की भक्ति की आकांक्षा सदैव रहेगी, आप बस मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। और राजा परीक्षित के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो साधुओं ने ऋषि वंश को या यदुकुल के वासियों को जो श्राप दिया था कि इसी लोहे के कारण जो कि पेट पे बांधा था सांब ने, तो साधुओं ने जो श्राप दिया था वो तो केवल एक बहाना था, वरना किसी साधु के श्राप में इतना पावर नहीं है कि वो भगवान के वंश को नाश करे। लेकिन भगवान की अपनी इच्छा थी, वो अपनी लीला को समेट कर जाना चाहते थे, इसीलिए जो वे अपने असंख्य परिवार के जो सदस्य हैं उनको भी अपने इस भौतिक जगत से, पृथ्वी लोक से अंतर ध्यान करके अपने धाम में लेके जाना चाहते थे। तो ये सब भगवान की इच्छा से हुआ, और भगवान की इच्छा ही थी कि वो उद्धव को ज्ञान प्रदान करके इस भौतिक जगत में बद्री का आश्रम में भेजना चाहते थे, इसलिए उद्धव यहीं पर रह गए। श्री शुक उवाच ब्रह्म शापापदेशेन कालेना मोघवांछितः संहृत्य स्वकुलं कुलं स्फीतं त्यक्षं देहं अचिन्तयत् ब्रह्म शापापदेशेन कालेना मोघवांछितः संहृत्य स्वकुलं स्फीतं त्यक्षं देहं अचिन्तयत् ब्रह्म शापाप देशेन। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा ब्रह्म शाप अर्थात ब्राह्मणों के द्वारा जो शाप दिया गया, अपदेशेन अर्थात बहाना ही था, वो तो केवल एक बहाना था, कालेन अर्थात नित्य काल द्वारा अमोघ अचूक वांछित ऐसा चाहने वाला, संहृत्य स्वकुलम स्फीतम, संहृत्य यानी बंद करके, स्वकुलम अपने परिवार को, स्फीतम अर्थात असंख्य, तक्षयन त्यक्षन अर्थात त्यागने के बाद, देहम अचिंतयत, देहम यानी विश्वरूप को अचिंतयत अपने आप में सोचा। अनुवाद, सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे प्रिय राजन, ब्राह्मण का शाप तो केवल बहाना था, किंतु वास्तविक तथ्य तो भगवान की परम इच्छा थी। वे अपने असंख्य पारिवारिक सदस्यों को भेज देने के बाद पृथ्वी के धरातल से अंतर्ध्यान हो जाना चाहते थे। उन्होंने अपने आप इस तरह सोचा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में श्री कृष्ण द्वारा अपना शरीर परित्याग करने के संबंध में त्यक्षण शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। चूंकि वे सच्चिदानंद विग्रह हैं, अतः उनका शरीर तथा उनकी आत्मा अभिन्न है। अतएव यह कैसे संभव हो सकता है कि वे अपना शरीर त्यागें और तब इस जगत की दृष्टि से ओझल हों? भगवान के रहस्यमय तिरोधान के विषय में अभक्तों या मायावादियों के बीच अत्यधिक विवाद है, और अल्पज्ञों की शंकाओं को श्रीराजीव गोस्वामी ने अपने कृष्ण संदर्भ में विस्तार से स्पष्ट किया है। ब्रह्म संहिता के अनुसार भगवान के अनेक स्वरूप हैं, उसमें कहा गया है कि भगवान के असंख्य स्वरूप हैं और जब वे जीवों की दृष्टि के अंतर्गत प्रकट होते हैं, जैसा कि भगवान कृष्ण वास्तव में प्रकट हुए, तो ये सारे स्वरूप उनमें मिल जाते हैं। इन अच्युत रूपों के अतिरिक्त उनका विश्व रूप है, जिसे उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के समक्ष प्रकट किया। इस श्लोक में स्फीतम शब्द भी प्रयुक्त हुआ है, जो यह संकेत करता है कि उन्होंने अपने विराट रूप का त्याग किया, अपने आदि नित्य रूप का नहीं, क्योंकि उनके सच्चिदानंद स्वरूप के बदलने की कोई संभावना नहीं है। भगवान के भक्तगण इस सरल ज्ञान से तुरंत अवगत हो जाते हैं, किंतु जो अभक्त हैं और भगवान की कोई भक्तिमय सेवा नहीं करते, वे या तो इस सरल तथ्य को समझते नहीं या जानबूझकर भगवान के दिव्य शरीर की नित्यता को जुटलाने के लिए विवाद खड़ा करते हैं। यह उस दोष के कारण है जिसे अपूर्ण जीवों को ठगने की प्रवृत्ति कहते हैं। यहाँ शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान ने जब अपना शरीर त्यागा का मतलब ये नहीं कि भगवान अपना भौतिक जगत में शरीर छोड़ के आत्मा को लेके गए, क्योंकि भगवान की आत्मा और शरीर तो सेम है। क्या त्यागा? भगवान ने जो स्वरूप धारण किया था इस भौतिक जगत में, उसको उस लीला को भगवान ने समेट लिया और भगवान अपने धाम में चले गए। लेकिन जो भक्त नहीं है, वो तो यही कहते हैं भाई भगवान की मृत्यु हो गई, भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती। तो श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं, भक्त तो इस बात को सरलता से स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान के जन्म और कर्म सब दिव्य हैं। तो भक्त इस पे विवाद नहीं करते कि ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान कैसे मर सकते हैं, भगवान कैसे जा सकते हैं, त्यागते कैसे अपना शरीर। वो जानते हैं कि ये सब भगवान की लीला है। लेकिन जो अभक्त होते हैं, वो बहुत विवाद खड़ा करते हैं और ये उनकी प्रवृत्ति होती है। व्यावहारिक अनुभव से भी आज तक यह देखा जाता है कि भगवान के दिव्य स्वरूप की पूजा भक्तों द्वारा विभिन्न मंदिरों में की जाती है और भगवान के सारे भक्त यथार्थ के रूप में अनुभव करते हैं कि मंदिर में अर्चा विग्रह का स्वरूप भगवान के स्वरूप से अभिन्न है। भगवान की अंतरंग शक्ति के इस अचिंत्य कार्य का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता 7.25 में किया गया है, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतम्। भगवान को यह अधिकार है कि वे सबों के समक्ष प्रकट न हो। पद्म पुराण में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियाय। भगवान का नाम तथा रूप भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, किंतु जब वे संसारी लोगों को दृष्टिगोचर होते हैं तो वे विराट रूप धारण कर लेते हैं। यह स्वरूप का अतिरिक्त भौतिक प्रदर्शन है और विशेष तथा इसके विशेषणों के तर्क द्वारा मान्य है। व्याकरण में जब किसी विशेषण का विशेष्य अलग कर दिया जाता है, तो इसके द्वारा विशेषित विशेष्य बदलता नहीं है। इसी तरह जब भगवान अपना विराट रूप त्यागते हैं, तो उनका नित्य रूप बदलता नहीं है, यद्यपि उनमें तथा उनके असंख्य रूपों में से किसी एक में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर बात है कि ये भगवान का अधिकार है कि वो किसके सामने प्रकट होना चाहते हैं और किसके सामने प्रकट नहीं होना चाहते हैं। भगवान ने कह दिया, नाहम प्रकाशतः सर्वस्य योगमाया समावृता, मैं हर किसी के सामने प्रकट नहीं होता हूँ, मैं योग माया के द्वारा छुपा रहता हूँ। और साफ साफ बताया गया है पद्म पुराण में कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। हम अपनी इन भौतिक जगत भौतिक दृष्टि से भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को नहीं जान सकते, ना ही देख सकते, क्योंकि सेवान्मुखे ही जीवादु स्वयमेव सुफुट्यदा। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो जिह्वा के द्वारा स्टार्ट करते हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, भगवान को ऑफर किए हुए प्रसादम को ग्रहण करते हैं, तब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। और भगवान को कोई भी स्वरूप जो है वो भिन्न नहीं है। यहाँ तक कि भगवान का जो अर्चा विग्रह होता है, जो मंदिर में रखा होता है, उसके साथ भी भक्त जो है वो प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। और असंख्य ऐसे भगवान के स्वरूप हैं जो भगवान जिनसे भक्त जो है वो आज भी वार्तालाप करते हैं, भगवान उनका रिस्पॉन्स देते हैं। तो यहाँ साफ साफ बताया कि ये सब भगवान के अलग अलग स्वरूप हैं। और पंचम सिकंद में ये देखने को मिलेगा कि किस तरह विभिन्न लोकों में अब भी भगवान की पूजा विभिन्न रूपों में की जाती है। इस पृथ्वी पर भी विभिन्न मंदिरों में किस तरह भगवान की पूजा की जाती है। श्री जीव गोस्वामी तथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी टीकाओं में वैदिक साहित्य के विभिन्न प्रामाणिक संस्करणों से उद्धरण देते हुए भगवान के तिरोधान की इस घटना की विस्तृत व्याख्या दी है। इस ग्रंथ की आकार वृद्धि के भय से हम जानबूझकर उन सबों को यहाँ समाविष्ट नहीं कर रहे हैं। यह सारा प्रसंग श्रीमद् भगवत गीता में विवेचित है, जैसा कि ऊपर उद्धरण दिया गया है। भगवान को अधिकार है कि वे हर एक के समक्ष प्रकट न हो। वे उन अभक्तों की दृष्टि से जो प्रेम तथा भक्ति से विहीन हैं, अपने को सदैव दूर रखते हैं। इस तरह उन्हें अपने से अधिकाधिक दूर करते जाते हैं। ब्रह्मा के अनुरोध पर भगवान प्रकट हुए थे, क्योंकि उन्होंने क्षीरोदक्षाय विष्णु के समक्ष प्रार्थना की थी। अतः जब भगवान प्रकट हुए तो विष्णु के सारे रूप उन्हीं में मिल गए, और जब उद्देश्य पूरा हो गया तो वे यथार्थ समय उनसे विलग हो गए। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में भगवान ब्रह्मा जी के अनुरोध पर प्रकट हुए थे, तो भगवान के स्वरूप में ही सारे स्वरूप जो है वो मिल गए थे। और फिर जब भगवान वापस से जब भगवान प्रकट हुए तो विष्णु के सारे स्वरूप इसमें मिल गए। और जब उद्देश्य पूरा हो गया, उद्देश्य क्या था? परित्राण साधुना विनाशय च दुष्कृतम, धर्म की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान आए थे। यथा समय जैसे ही उद्देश्य पूरा हुआ तो सारे स्वरूप जो है वो अपने अपने लोकों में चले गए और भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक वृंदावन धाम में चले गए। तो इस तरह से भगवान ने इस भौतिक जगत को अपनी लीलाएं समेट कर त्याग दिया और अपने आध्यात्मिक जगत में चले गए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने प्रेम से श्रवण कर रहे हैं। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।